તારીખ 1/2/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 438 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 539
લક્ષણો જીવનનું સ્વરૂપ સમજવા અર્થે આપની સમજી મનાક્ષી દાસ કા નાટક સમયસાર મેં ઇસ દુહા મેં જીવ કે લક્ષણ બતાયા હૈ જીવ કે સ્વરૂપ કો સમજાને કે લીએ ઇસમેં પહેલા લક્ષણ લિયા ધ્રુવત્વ અપના જો સ્વરૂપ હૈ જૈસા હૈ વૈસા અનાદિ અનંત એક રૂપ બિના ફેરફાર વૈસા કા વૈસા રહેતા હૈ ઉસમે કભી કિસી પ્રકાર કા ફર્ક નહીં હોતા જ્ઞાન સુખ આનંદ આદિ ગુણ સે સંપન્ન હૈ ઓર પરિપૂર્ણ હૈ તો અપને જ્ઞાન ઓર સુખ કે લીએ કિસી કી અપેક્ષા ભી નહીં હૈ એસા નિરપેક્ષ તત્વ ઓર પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ વૈસા કા વૈસા હમેશા રહેતા હૈ ઇસલિયે ઇસકા નાશ હોને કા ભી કોઈ ભય નહીં હૈ ઓર ઇસકા કોઈ કમજોર હોને કા ભી ભય નહીં હૈ ઓર ઉસ સ્વરૂપ સે હી સુંદર હૈ રમ્ય મેને સ્વરૂપ સે હી સુંદર હૈ ઉસમે સ્ફૂર્તિ હોતી હૈ જીવંતપણા હોતા હૈ ઓર ઉસકી વિદ્યમાનતા સે હી સબ સુંદર સુંદર દિખતા હૈ પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય હૈ યા કિસી પ્રાણી કી સુંદરતા હૈ મનુષ્ય કી સુંદરતા હૈ ઉસ જીવ કી વિદ્યમાનતા કે કારણ સે હોતા હૈ તીસરા ધર્મ લિયા ઉર્ધતા ધર્મ યાની મુખ્યપના કે અપની વિદ્યમાનતા સે હી સબ કુછ જાના જાતા હૈ સભી પદાર્થ કે જ્ઞાન મેં જાનને વાલા હી મુખ્ય રહેતા હૈ ઓર મુખ્ય રહેના ચાહીએ એસા એક ઉર્ધતા ધર્મ હૈ ઉસકો જાનને સે અપના મુખ્યપણા રહેતા હૈ ઓર અપની મુખ્યતા રહેને સે કિસી ભી નેય કી મુખ્યતા નહીં હોતી અન્ય પદાર્થ કી મુખ્યતા નહીં હોતી ઓર અન્ય પદાર્થ કી મુખ્યતા નહીં હોને સે અન્ય પદાર્થ કે પ્રતિ વ્યામોહ રાગ દ્વેષ આદિ અનેક પ્રકાર કે દુઃખમય પરિણામ હૈ વો નહીં હોતે હૈ યે તીન ધર્મો કે વિષય મેં સ્વાધ્યાય ચલા હૈ અપના દો દિન મેં અબ કહેતે હૈ કે જ્ઞાયકતા ધર્મ હૈ પ્રગટ એસે જડ પદાર્થ ઓર જીવ ये जिस कारण से भिन्न पड़ते हैं यह लक्षण जीव का नायकपणा नाम के गुण है नाम का गुण है जीव जानता है ज्ञान इसका एक गुण है इसका स्वरूप है वो ज्ञान लक्षण से क्या फायदा है કે જડ ઓર જીવ કી ભિન્નતા સ્પષ્ટ રૂપ સે નજર આતી હૈ ફાયદા વો હૈ ઉસમે લાભ વો હૈ કે જીવ અપના નાયકપણા સે ભિન્નતા કભી નહીં કિયા કભી નહીં કર રહા હૈ કભી કિયા ભી નહીં ઓર જડ પદાર્થ સે દેહાદી સે અપની અભિન્નતા કા અનુભવ કિયા હૈ ઓર યહી કારણ સે વો દુખી હો રહા હૈ देहादि से एकत्व बुद्धि जीव की अनादि से है, तो इसी कारण से अनेक प्रकार के विभाव भी होते हैं, दोष होते हैं, और दोष और दुख एक सिक्का के दो बाजू होने से साथ ही रहते हैं, दोष होता है तो दुख होता है। ऐसे अनादि दोष को मिटाने के लिए जीव का नायक भाव है वो मुख्य भिन्न करने के लिए साधन होता है, ज्ञान ही साधन है मुमुक्षु जीव को कल्याण में या आत्म में, एक ज्ञान ही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। इस दोहा में दूसरे दूसरे लक्षण कहे हैं, फिर भी ज्ञान की प्रधानता है, क्योंकि इससे वो भिन्न जाना जाता है, और अनादि से भिन्न जाना ने यही सभी प्रकार की विपत्ति का कारण हुआ। दूसरे लक्षण तो अन्य पदार्थ में भी है, जैसे ध्रुवत्व है, तो पुद्गल भी अपने स्वरूप से ध्रुव है, अस्तित्व है तो पुद्गल भी अपने स्वरूप में त्रिकाल अस्तित्व रखता है। एक ज्ञान ऐसा लक्षण है कि जिस कारण से जड़ और चैतन्य की भिन्नता जानी जाती है या अनुभव भी की जाती है। यथार्थ ज्ञान नहीं होने के कारण, ज्ञान तो सब जीव में है ही, लेकिन यथार्थ ज्ञान नहीं है तो विपरीत ज्ञान है, वो विपरीत ज्ञान को ही अज्ञान बोलने में आता है। अज्ञान में ज्ञान का अभाव उतनी सी बात नहीं है, मुख्यतया तो अज्ञान कहने से विपरीत ज्ञान की बात कर रही है। तो विपरीतता क्या है कि हम शरीर आदि ज्ञेय को जानते हैं और अपने रूप जानते हैं, ये शरीर मेरा है, ये सुंदर है तो मैं सुंदर हूँ, ये कुरूप है तो मैं कुरूप हूँ, ये मोटा है तो मैं मोटा हूँ, ये दुबला है तो मैं दुबला हूँ, इसका वजन घट गया तो मेरा वजन घट गया, इसका बढ़ गया तो मेरा वजन बढ़ गया। इतना एकत्व और अपनत्व कर रखा है और हो रहा है कि इसी कारण सभी प्रकार के विभाव उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, यही कारण है। फिर क्या होता है कि इस देह के अनुकूल प्रतिकूल जो भी होते हैं, जिसके जितने भी संबंध वाले होते हैं, उस सबसे अपनत्व कर लेता है जी। जैसे इस देह के माँ बाप भाई बहन पुत्रादि जितने भी संबंध रखने वाले हैं, उसमें भी अपना तो करता है कि सब मेरे हैं। फिर जिस मकान में रहता है उसमें अनुकूलताएं होती हैं, उसमें अपना तो करता है, जिस समाज में रहता है, जिस सर्कल में रहता है, उसमें जितने अनुकूल रहते हैं सब में वो ममत्व करता है, अपना तो करता है। तो उसी कारण से एक देह को, देह में आत्मबुद्धि होने से वो पूरी दुनिया को बसा लेता है, अपने एक अपनी पूरी दुनिया खड़ी कर लेता है, और अनेक प्रकार का विभाव करके दुखी होता है, दोष करके दुखी दुखी होते रहता है। ये दोष मिटाने के लिए एक ज्ञान ही साधन है, ज्ञान से ही भिन्न भिन्न जाना जाता है कि ये जड़ है, मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे ज्ञान में किसी की मिलावट होती नहीं है, कोई चीज़ आती है तो मुझे मिलती नहीं है, कोई चीज जाती है तो मेरे में से जाती नहीं। प्रकट ऐसे जड़ पदार्थ और जीव, यह जिस कारण से भिन्न पड़ते हैं, भिन्न पड़ने में एक ज्ञानी लक्षण से भिन्न पड़ते हैं, ज्ञान से ही भिन्न जाने जाते हैं, ज्ञान से ही भिन्न अनुभव किए जाते हैं। ऐसा गायकपणा में न ज्ञान नाम का गुण है। कोई भी समय में, किसी भी समय में गायक रहितपने से यह जीव पदार्थ किसी को भी अनुभव में आ सकता नहीं। ज्ञान रहित पदार्थ अनुभव में नहीं आ सकता। राग का नाश होता है वितरागता होने पर, लेकिन ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। एक समय के लिए ज्ञान को बंद भी नहीं कर सकते जानने के लिए, तुम जानना बंद कर दो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका स्वरूप है वो, तो उसका अभाव कभी हो सकता नहीं है। किसी भी समय में ज्ञायक रहित पने से यह जीव पदार्थ कोई भी अनुभव नहीं कर सकता, और यह जीव नाम का पदार्थ, पदार्थ के सिवा दूसरा कोई भी पदार्थ में ज्ञायक पना संभव नहीं है। जीव के अलावा छोड़ करके दूसरे में ज्ञायकपणा संभव नहीं है, एक है। बाकी पांच द्रव्य तो अजीव है, उसमें ज्ञान नहीं है, यहां से फर्क पड़ता है। जो भिन्न पड़ता है वो ज्ञान से ही भिन्न पड़ता है, ज्ञान रहित वो अजीव, ज्ञान सहित वो जीव, वो अनुभव प्रकाश में आता है। ज्या ज्या ज्ञान त्या त्या हूं हूं मैंने आत्मा, ज्या ज्या ज्ञान त्या त्या हूं एवो दृढ़ भाव ते सम्यक्त्व छे। इधर मैं वो शुरू किया था, अनुभव प्रकाश करने दिया था। यह जीव नाम के पदार्थ, जीव नाम का पदार्थ के सिवा दूसरा कोई भी पदार्थ में ज्ञानपना संभवित हो सकता नहीं, ऐसा जो अत्यंत अनुभव का कारण, ज्ञान क्या है, अनुभव का कारण है, ज्ञान से अनुभव कर सकते हैं, दूसरा कोई गुण अनुभव करने में काम में नहीं आता, ऐसा जो अत्यंत अनुभव का कारण नायकता, यह लक्षण जिसमें है, यह पदार्थ तीर्थंकर ने जीव कहा है। इस पदार्थ को, ऐसे पदार्थ को तीर्थंकर ने जीव कहा, नान से जीव कहा है। अनादि अनंत तो पुद्गल भी रहता है, और भी द्रव्य रहते हैं छो, लेकिन ज्ञान से उसको जीव कहा है। वो 47 शक्ति है समय सार में, अमृतचंद्र आचार्य ने परिशिष्ट लिखा है उसमें। उसमें पहली शक्ति जीवत्व शक्ति लिया है वर्णन करने में, और जीवत्व शक्ति में क्या लिया है, तो प्राण से जीवत्व होता है, प्राण से जिया जाता है, तो जीवत्व शक्ति में प्राण कौन है कि ज्ञान और दर्शन जिसका प्राण है ऐसी जीवत्व शक्ति लिया है। ज्ञान दर्शन जिसका प्राण है ऐसे जीवत्व शक्ति है। जबकि ज्ञान एक भिन्न शक्ति है, दर्शन एक भिन्न शक्ति है, फिर उसमें जीवत्व शक्ति का प्राण ज्ञान दर्शन ही है ऐसा दिया है।
ऐसे में ज्ञान दर्शन ये जीव को विश्वास नहीं आया इसीलिए शरीर जितना ही अपना
है। हाँ, विश्वास नहीं आया और अनादि से शरीर जितना माना भी है, स्वीकार भी कर लिया है, तो जो झूठा स्वीकार है वो छूटे तब तो सच्चा स्वीकार हो गए ना। दो विरुद्ध निर्णय एक साथ तो रहेगा नहीं ना। जो झूठा निर्णय है उसका नाश होने से सच्चा निर्णय हो सकता है। झूठा भी निर्णय रहे और झूठा तो अनादि से है ही। विधान कर सकते हैं मुमुक्षु जीव इस बात को समझ करके मिलान करता है पूरे कि मैं अपने शरीर को अपना रूप मानता हूं कि नहीं मानता हूं। मानता हूं तो फिर कहने वाला सही कह रहा है। ज्ञानी के वचन पर प्रतीति क्यों आती है, कल बात चलेंगे शाम को घूमने कि ज्ञानी के वचन पर प्रतीति क्यों आ रही है कि हम हमारे तरीके से जो जीवन जीते हैं उसमें हम खुद क्या कर रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं उसका भान हमको नहीं है। ज्ञानी बताते हैं कि देख तुम ऐसा कर रहे हो, जब मिलान करते हैं तो पता चलता है कि तुम देह में अपनत्व कर रहे हो। अगर देह थे तुम्हारा स्वरूप होता तो वो कभी मिटता नहीं, जाता नहीं, अलग होता नहीं। देह तो अलग हो ही जाता है, वो तो रोजाना सबको मालूम पड़ता है, आज वो मरा कल वो मरा, उसका देह का संस्कार हो गया। जब देह भिन्न है फिर भी हम भिन्न नहीं मान रहे हैं, ये हमारी गलती है, वो गलती ज्ञानी बताते हैं तो उसके वचन पर प्रतीति आती है, विश्वास आता है। कर रहे हैं देखो, मनुष्य में सूक्ष्म का बुद्धि का अहम होता है, सबको अपना अपना होता है। मैं कोई बुद्धि वाला हूं लेकिन इतनी बड़ी गलती करता है वो बात जब उसके ध्यान में आती है तब लगता है कि ज्ञानी मेरे से भी बुद्धि वाले हैं, इतनी बड़ी भूल मैंने कैसे कर दिया। ये शरीर इतना जड़ पदार्थ, जड़ परमाणु का पिंड है और मैं चैतन्य ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं। जाति से विरुद्ध जाति के पदार्थ है, एक ज्ञान रहित है एक ज्ञान सहित है। बिल्कुल बी जातीय पदार्थ होने पर भी हम दोनों को एक मानकर जीवन जीते हैं, कितनी बड़ी गलती है। और यही कारण से दुखी होते हैं।
ये बात तो अज्ञानी भी कहता है, दूसरे का बात तो अज्ञानी भी कह सकता है, अज्ञानी भी कहते हैं। इसमें दोनों में इस तरह के बात में कहते डिफरेंशिएट करके आपको पता लगे कि ज्ञानी के ज्ञानी का बात है।
दूसरी बात वो चली थी कि ज्ञानी के वचन में अपूर्वता कैसे लगती है, फिर घूमने को गए शाम को वो चर्चा चली। इसमें टोन अलग है, ज्ञानी का टोन अलग है, अज्ञानी का टोन अलग है। रुपया तो रुपया है, एक चांदी का है और एक कलाई का है, क्या नकली है? नकली कभी अच्छा भी दिख सकता है, चांदी का पुराना हो, थोड़ा काला हो गया हो और कलाई का नया बनाया हुआ हो, है? कैसे पता चलेगा कि उसको पछाड़ेंगे? गुजराती में हमारे खखड़ा वैसे, उसके रणकार से पता चलेगा कि ये चांदी का है, ये कलाई का है। दिखाओ में तो बढ़िया है, नकली है वो बढ़िया है, ऐसे दोनों के कहने के जो का जो अंतर्ध्वनि है, जिसको अंडरटोन कहते हैं अपन, वो अलग अलग होता है। एक असल है, एक नकल है, कहने तो कहते तो दो ही है। तो असल में कहते हैं वो भिन्न अनुभव करके कहते हैं, तो उसमें भिन्नता का एक रणकार होता है, टोन होता है। वो टोन जो अभिन्न भाव से अनुभव कर रहे हैं उसमें आएगा कहां से? आएगा तो नहीं। ये टोन की जो परख है, परख करने वाले जानते हैं, चीज रही परख की आखिर में, बात तो बात है, परख से पता चलता है।
जिसको परख नहीं तो एक जैसा ही
समझेगा, एक जैसा ही समझेगा।
ज्ञानी की वाणी होती है आत्मस्पर्शी होती है,
आत्मस्पर्शी होती है, इसलिए तो टोन अलग पड़ता है ना। तो बात तो चली थी अपूर्वता के, कि ज्ञानी की वाणी में अपूर्वता कैसे लगे, कि जब वो आत्मस्पर्श की वाणी आती है और दूसरे मुमुक्षु सुपात्र आत्मा को स्पर्श करती है, उसको अंदर से उसको जागृत करती है और उसमें उसको लगता है कि अनुभव सहित पना है उसमें, और अपने में भी अपूर्व भाव पैदा होने लगता है, तो अपने भाव के अपूर्वता से आरोप किया जाता है कि वाणी भी अपूर्व है, वचन भी अपूर्व है, ऐसा बोला जाता है। बात तो यहां से होती है। तो 700-619 में तो उसे लिया है, आशय भेद है ऐसा करके लिया है, ज्ञानी की वाणी और अज्ञानी की वाणी में आशय भेद है। गुजराती में 496 उसमें तीसरा पैराग्राफ है, ज्ञानी की वाणी पुरवार पर अविरोध आत्मार्थ उपदेशक, आत्मा का जो प्रयोजन है उसका उपदेश करने वाली, अपूर्व अर्थ का निरूपण करने वाली, ये अपूर्वता का बात यह है, और अनुभव सहित बना होने से दूसरे आत्मा को सतत जागृत करने वाली होती है। इतने गुण होते हैं उसमें, तो दूसरे को इसकी असर पहुंचती है, अज्ञानी के माने की इतनी असर नहीं पहुंचती, क्योंकि खुद को ही असर नहीं है तो वो रस नहीं है। ये बात क्या है, आपस के रस की होती है, जो अपने आत्मा रस में विभोर होकर के ज्ञानी बोलते हैं, तो उस रस का असर पड़ता है सुनने वाले को, तो उसको वही रस जागृत होता है और ये भाव अपूर्व होने से अपूर्वता मालूम पड़ती है। और ज्ञानी की वाणी में पूर्वार्थ पर विरोधता नहीं है, ये सबसे बड़ा गुण है। पदार्थ में परस्पर विरुद्ध धर्म है, नित्यत्व और अनित्यत्व, शुद्धता और अशुद्धता, एकता और अनेकता, भेदता और अभेदता, लेकिन पदार्थ दर्शन होने के कारण से सभी धर्म को एक साथ जानने वाला विरुद्ध धर्म अविरुद्ध रूप से कह सकते हैं, बता सकते हैं। ये सबसे बड़ा गुण है ज्ञान। और अज्ञानी को पदार्थ दर्शन नहीं है, उनको जगह जगह कल्पना करनी पड़ती है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो ऐसा होना चाहिए, लेकिन खुद को तो पदार्थ दर्शन है नहीं। तो वो वाणी में कहीं न कहीं विरोध आए बिना रहेगा नहीं। वो बात यह है, बहुत सी बात लिया है, पूरा पत्र है। और ज्ञानी और अज्ञानी की वाणी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं इसमें आई है।
अज्ञानी की वाणी में भाव संतुलन का भाव रहता
है, नहीं होता, बैलेंस नहीं रहेगा, कहीं न कहीं वो एकांत कर लेगा। देखिए आजकल स्वाध्याय में वो चर्चा चल रही है, बातें थोड़ी थोड़ी समझने लायक है कि किसी को लगता है कि हमारी बात सही है, और बात सही भी होती है कहने वाले की, फिर भी यथार्थ नहीं होती है, इसका कारण क्या, इस पर चर्चा चलती है, इस मुद्दे पर चर्चा चलती है। तो बात सही है, और बात सही होने पर भी यथार्थ नहीं है, इसका क्या कारण है। गुण का एक रूप पदार्थ होने से द्रव्य की अभेदता भी है। अब गुण भेद है वो भी सत्य है, पर अभेदता है वो भी सत्य है, दोनों बात तो सही है। जो भेद प्रभेद में जाता है जिसका भजन, वो तो अभेद को अनुभव नहीं कर सकता, और भेद को जान करके भी जो अभेद पर जिसका भजन जाता है उसको अनुभव होता है, अभेद स्वरूप का, क्योंकि अनुभव में तो विकल्प का अभाव होता है। निर्विकल्प दशा को तो अभेद पड़खा ही अनुकूल है, अवज्ञ है, भेद वाला स्वरूप है उसके अवलंबन को अनुकूल नहीं है, क्योंकि भेद से विकल्प की उत्पत्ति होती है,
भेद को कल्पना कह देते हैं,
इसलिए भेद को कल्पना बोल देते हैं। अध्यात्म में उसको कल्पना बोल दें, जिसके द्रव्यानुयोग में वो बात सही है, ऐसी बात। दूसरा दृष्टांत और एक ले लें कि हमारे ज्ञान में अनेक ज्ञेय प्रतिभासित होते हैं। ज्ञान एक स्वच्छ दर्पण जैसा ज्ञान का पर्दा है, जिस पर अनेक पिक्चर आते हैं, जो भी सामने पदार्थ आते हैं वो ज्ञान में प्रतिबिंबित दर्पणवत हो जाता है। और ज्ञान की अवस्था वैसे की वैसी रहती है, तो ज्ञान का दो रूप है, ज्ञान का दो रूप है, ज्ञेयाकार भी है और ज्ञानाकार भी है। सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी जी ने आदि ज्ञान का दो रूप है, ज्ञेयाकार ज्ञानाकार। अब जब दोनों ज्ञान का ही रूप है, हमको तुल कहां देना है, वजन कहां रखना है। नयाकार ज्ञान पर वजन जाएगा तो मेरे में आसक्ति हुए बिना रहेगी नहीं। नियाकार ज्ञान का आविर्भाव होने से नई लुब्धता पैदा हो जाती है और अनेक प्रकार के विकार विभाव होने लग जाते हैं। और ज्ञान सामान्य का आविर्भाव होता है तो प्रकट रूप ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव होता है, निर्विकार चैतन्य का। तो दोनों सही है, लेकिन सही है लेकिन वजन कहां रखना, वो एक बुद्धिमानी की चीज है। अगर गलत जगह पर वजन है तो बात सही है तो भी नुकसान करता है। क्या करता है? नुकसान होता है, शांति होती है जीव को, क्लेश होता है। तो वहां से विभाव का होना नहीं होना हमें वो बात है, लेकिन समझाने वाले भी चाहिए। ठीक, रख लिया आपका।
हाँ,
ज्ञाकार में ही आविर्भाव हो रहा है तो दोनों का आविर्भाव हो नहीं सकता किसी का। एक का आविर्भाव में दूसरे का तिरोभाव है। तो अनादि से ज्ञान विशेष का, नियाकार ज्ञान का ही आविर्भाव हो रहा है, जीव जीव में आसक्त हो रहा है और अनेक प्रकार के विभाव को परिणमन करके दुख और क्लेश को प्राप्त करता है और परिभ्रमण करता है। इसके फलस्वरूप जब ज्ञान सामान्य का, ज्ञानाकार ज्ञान का आविर्भाव करता है तो ज्ञाकार ज्ञान तिरोभूत हो जाता है, गौण हो जाता है, उसका विरोध छूट जाता है और निराकुल शांति का अनुभव होता है उसमें, आत्मशांति का। तो इसलिए बात वो निकली कि सही बात होने पर भी वो तूल देने योग्य है कि नहीं, मुख्य करने योग्य है कि नहीं है, उसका भी विवेक करना पड़ता है। बात सही है इतना नहीं चलता है। तीसरा दृष्टांत ले रहे, सब थोड़ा उपयोगी है हमारे भूमिका में, इसलिए ले कि हम दूसरे मुमुक्षु का दोष हमको देखने में आता है। तो बात तो सही है कि उसमें दोष तो है, ये बात गलत नहीं है, और ज्ञान का स्वभाव जानने का होने से वो जानता भी है। लेकिन वजन देना कि नहीं देना वो एक विवेक करने की चीज होती है कि दूसरे का दोष देखने में आए तो भी हमको वजन नहीं देना है। अगर दोस्त पर ही वजन देना है तो अपने दोस्त पर वजन दो। हाँ, और दूसरे का अल्प गुण भी देखने में आए तो उस पर वजन रखो, और अपने में अधिक गुण देखने में आए तो भी उसको दबाओ, छिपाओ। ऐसे न्याय का विषय थोड़ा अटपटा है, ऐसे न्याय होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नुकसान अवश्य होता है। बात सही होने पर भी अपने को नुकसान होता है, किस लिए? कि एक तो हमारी अनादि से दोष दृष्टि तो है ही, और हमारी दोष दृष्टि से दूसरे को दोष दिखने से हमारी दोष दृष्टि को हम बढ़ावा दे दिया, इसका ख्याल हमको नहीं रहा। नुकसान तो हमारे खाते में आएगा, हमारे पाते में आएगा, तो अपने को तो अपना प्रयोजन देखना है। हाँ, ये नुकसान देखेगा तो फर्क हो जाएगा, एकदम फर्क हो जाएगा। और कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न तो होते ही नहीं। मनुष्य माने गुण दोष का मिश्र रूप जो पुतला होता है उसका नाम मनुष्य है। मनुष्य एक पुतला है जिसमें गुण दोष दोनों का मिश्रण होता ही है। अगर सर्वगुण संपन्न होता तो देव बोला जाता उसको, सर्वज्ञ देव, तो वितराग है, सर्वगुण संपन्न है, तो अवगुण उसमें नहीं है। मनुष्य तो या साधक भी होता है तो गुण दोष सहित ही होता है। अब किसको, जब दो परस्पर विरुद्ध पहलू है तो किसको मुख्य करना किसको गौण करना, ये बात का विवेक हमें करना पड़ता है। और वो हमारे लाभ के कारण से, हमारा लाभ नुकसान हमको समझना है। आजकल वो चर्चा बहुत से पॉइंट्स आते हैं तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, क्योंकि यहां भूल होती है, अपनी सच्ची बात है उसकी सच्चापन पर जो वजन जाता है तो इस प्रकार की भूल हो जाती है। यहां अपने चलते प्रकरण में जीव का जानने वाला जो गुण है उस लक्षण से जीव जड़ पदार्थ से भिन्न जाना जाता है। और जड़ पदार्थ से भिन्नता जाननी, अनुभव करनी, ये हमारा मुख्य प्रयोजन भी है, ये हमारा खास प्रयोजन है। क्योंकि यही गलती हम अनादि से करते आ रहे हैं। ये भी थोड़ा जो टोन है, टोन की बात चली, वो टोन यहां मिलता है। अत्यंत अनुभव का कारण ऐसा ज्ञायकता लक्षण, यहां से ये टोन मिलता है। नायकता जड़ चेतन से भिन्नता भी करता है और अपना अनुभव का वो अत्यंत कारण है। अत्यंत इसलिए है कि ज्ञान में जो अनुभव करने का, वेदन करने का गुण है, धर्म है, वो हमेशा हमेशा एकांत शुद्ध रहता है। जैसे जीव का मूल स्वरूप एकांत शुद्ध है और ये सम्यक एकांत का विषय है, वैसे ही ज्ञान में जो अनुभूति है, वेदन है, वो हमेशा एकांत शुद्ध रहता है। क्योंकि उसमें कोई दूसरे के असर नहीं पहुंचते। ज्ञान विशेष का संबंध ज्ञेय के साथ है, कि जैसा ज्ञेय वैसा ज्ञान। यहां काला रंग है तो काला दिखेगा, पीला है तो पीला दिखेगा। लेकिन ज्ञान सामान्य जो वेदन रूप है वह किसी के कोई असर नहीं है, वो एकांत शुद्ध ही रहता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध वहां नहीं है, ज्ञान ज्ञेय का निमित्त नैमित्तिक संबंध वहां नहीं होता। इसलिए यहां से अपना शुद्ध स्वरूप अनुभव गोचर रूप से पहचाना जाता है। इसलिए ये जो अनुभूति है ज्ञान की, जो वेदन है, यहां से अपना शुद्ध स्वरूप, मूल स्वरूप, अनुभव गोचर रूप से पहचाना जाता है, क्योंकि स्वरूप भी निर्विकल्प है और ज्ञान वेदना भी निर्विकल्प है। ज्ञान का स्पर्श संवेदन निर्विकल्प है और स्वरूप भी निर्विकल्प है, इसलिए निर्विकल्प स्वरूप की पहचान इसी लक्षण से होती है। भिन्नत्व भी यहां से होता है और पहचान भी यहां से होती है। एक साथ दो बात एक ही धर्म से होती है, एक ही लक्षण से होती है।
ठंडी गर्मी जब लगता है तब अनुभव में ऐसा ही आता है कि मेरे को ठंड लग रहा है, मेरे को गर्मी लग रहा है, वहां पर भिन्न अनुभव कैसे संबंधित
है? वो भ्रम से लगता है। वास्तव में जैसे ये ठंड के दिन चल रहे हैं, है ना, अब आप देखिए भीतर में जांच करिए, तलाश करिए कि अपना ज्ञान कितना ठंडा हुआ। ज्ञान के अनुभव को पकड़ करके देखिए, इतना शर्त है हमारा। फिर से ज्ञान में ज्ञानानुभव हो रहा है सबको, आबाद गोपाल सभी को, इस अनुभव को पकड़ करके देखिए कि ज्ञान ठंडा हुआ कि नहीं हुआ। वातावरण में ठंडक है वो मालूम पड़ती है, लेकिन मेरा ज्ञान ठंडा नहीं हुआ। बहुत तीव्र ठंडी होने पर भी ये अनुभव हो सकता है और ये प्रयोग करना चाहिए, ये प्रयोग का विषय है। लगना नहीं लगना वो प्रयोग का विषय है। भ्रांति से हमको लगता है कि ठंड हमें लगती है, वास्तव में ठंड गर्मी गर्मी जो भी है, ठंडी गर्मी जितनी भी है, वो जानने की चीज है, अनुभव करने की चीज है ही नहीं। देखो ये तलाश करने की चीज है, होता है ज्ञान ठंडा होता है कभी? टेम्परेचर ज्ञान का आता है कभी? नहीं आएगा। फिर कैसे लगा? भ्रम से लगा
होता होता, एवरेस्ट पे चढ़ते हैं जब खतरा होता है उनको विवेक नहीं होता, अगर ज्ञान ठंडा हुआ होता तो अब क्या करना, ये विवेक नहीं उठ पाता।
होता ही नहीं,
नॉर्मल ढंग से नेचुरल ढंग से फंक्शनल रहता है।
कल ज्यादा ठंडी थी, प्रॉपर बोलता है ना, दार्जिलिंग में तो इससे भी ज्यादा होती है। अपना स्ट्रेट वे देखो तो कलकत्ता के ऊपर हिमालय में दार्जिलिंग, उसमें ज्यादा भी बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो वहां भी अपने ढंग से रहते कि नहीं रहते, क्या खाली हो जाता है क्या? अपने ढंग से रहते, किसी का ज्ञान तो ठंडा नहीं हुआ, वहां भी नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ। जो बात है वो शरीर की है, सर्दी गर्मी लगती है, वो शरीर की अवस्था में फेरफार होता है, ज्ञान की अवस्था में नहीं है। जिसको मालूम पड़ा कि सर्दी लगी शरीर को, उसको सर्दी नहीं लगी है। लगी है क्या? इस शरीर को जुखाम हुआ, वो जानने वाले को हुआ जुखाम क्या? नहीं होता। ये भिन्नत्व करना है और ऐसा अत्यंत अनुभव का कारण कोई है तो वो ज्ञान है, वो अत्यंत अनुभव का कारण है। एकदम अनुभव का कारण है, भिन्न अनुभव हो सकता है इससे। वो तो हर हालत में तो अनादि से जड़ से अभिन्नता मान रखी है, जान रखी है, वो बड़ी गलती हुई है और वही सभी दुख का कारण हुआ है। वो दुख से छुड़ाने के लिए ये उपदेश भी विज्ञान की प्रधानता से कर रहे हैं। ज्ञान उसमें साइंस की प्रधानता है। देखो दोनों पदार्थ ही अलग अलग हैं, दोनों पदार्थ के गुणधर्म अलग अलग हैं, और जहाँ जीव का अस्तित्व है वहाँ जड़ का अस्तित्व नहीं, जहाँ जड़ का अस्तित्व वहाँ जीव का नहीं। तो जहाँ मेरा अस्तित्व नहीं है, ऐसे शरीर से लेकर के कुटुंब मकान आदि जो भी दूसरे पदार्थ हैं जो मेरे दिखते हैं, अस्तित्व तो तेरा है ही, कैसे दिखते हैं? जहाँ अपना अस्तित्व नहीं है वहाँ अपनापन कैसे किया? कल्पना से किया तो इसका फल दुख है, कल्पना का फल दुख है। अब तुझे दुखी होना है या नहीं होना है तुम्हें सोचो। ये वस्तु का स्वरूप खुला कर दिया है, ज्ञानियों ने वस्तु का स्वरूप को खुला करके रख दिया है।
तो वेदन होता है तो मोह के कारण होता है, और वेदन में जानी पना भी होता है, और वो वेदन जो होता है उसका मोह है वहाँ पर जुड़ा है।
मोह के कारण से भिन्न वेदन नहीं हो रहा है, भिन्न ज्ञान नहीं हो रहा है, अभिन्नता का वेदन और ज्ञान हो रहा है, जबकि ऐसा है ही नहीं, वस्तु का स्वरूप ऐसा है ही नहीं। राणा जी का हाथ कट गया था उस वक्त, हम थे वहां, एक्सीडेंट हुआ था, हम वो भी पूछते थे कि हाथ कट गया तो आप में से कुछ कट करके कुछ पोर्शन अलग हो गया है, ऐसा अनुभव होता है क्या? वही चर्चा हम करते थे फर्स्ट एड के टाइम में। उसको जब फर्स्ट एड मिल रहा था वो बांध में थे, हम ये पूछते थे कि आज पहले यहाँ तक था, आधा घंटा पहले तो आपको अपना हाथ दिखता था कि मेरा हाथ इतना है, अब इतना ही है, ये पोर्शन नहीं है, तो मेरे में से कुछ कट गया, ऐसा कोई अनुभव में आता है क्या? नहीं, मेरा अनुभव तो बोलता है कि मेरा हाथ पूरा है, ऐसे बोलते थे। क्या बोलते थे? तो मेरे अनुभव में आता है कि मेरा हाथ पूरा है, अंगूठा इधर है, उंगली इधर है, वो है, वो उंगली अंगूठा इस पर ऐसा होता है, ये सब ऐसा करते थे, जबकि हाथ तो था ही नहीं। वो अत्यंत अनुभव का कारण तो ज्ञान है, हाथ नहीं है। आदमी है, उंगली अंगूठा सब है ना, मालूम पड़ता है सब, इधर मालूम पड़ता है, पहले तो यहाँ तक मालूम पड़ता था, वो प्रदेश संकुचित नहीं हुए थे, हाथ कट गया लेकिन हाथ के प्रदेश संकोच होकर के इधर नहीं गए थे, तो यहाँ तक मालूम पड़ते थे, यहाँ का हाथ था नहीं, पुद्गल हाथ तो नहीं था, शरीर वाला हाथ नहीं था, अब ये संकुचित होकर के इधर आ गया तो इधर मालूम है कि ये अंगूठा है, उंगली है, वो है, वो है, सब मालूम पड़ता है। मतलब क्या कि शरीर कटने से आत्मा कटता नहीं, ये अत्यंत अनुभव का कारण है, इनको तो आसानी से भेद ज्ञान होना चाहिए। इसको जो एक्सीडेंट हुआ है इससे उसको तो आसानी से भेद ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि भेद ज्ञान का अच्छा से अच्छा अनुभव का प्रयोग है, ये बहुत अच्छा प्रयोग है। जैसे भिन्नता का प्रकट अनुभव है वहां, ऐसा अनुभूति स्वरूप को श्री तीर्थंकर ने जीव कहा है। अनुभूति स्वरूप ऐसे पदार्थ को श्री तीर्थंकर ने जीव कहा है। यहां से जीव जाना जाता है, तीन काल तीन लोक में जीव को जानने के लिए ज्ञायकता ही एक लक्षण है। दूसरे लक्षण से वो भिन्न पहचाना नहीं जाता, भिन्न जाना नहीं जाता। और आत्मज्ञान होने के पहले पहचान होती है, सीधा आत्मज्ञान किसी को नहीं होता है, इसके पहले पहचान होता है, पहचान होने के बाद अनुभव ज्ञान होता है, और वो पहचान भी अनुभवांश से होती है। उसके लिए ज्ञान एक ही साधन है, दूसरा कोई साधन है ही नहीं। चार पंक्ति में दो बात बता दिया है कि एक तो जड़ पदार्थ आदि से भिन्न पड़ता है ज्ञान लक्षण से, और एक ज्ञान लक्षण से अत्यंत अनुभव का साधन मिलता है। अत्यंत अनुभव का साधन ज्ञान है, दूसरा कोई नहीं है। और इससे भिन्न ज्ञान में आत्मा की पहचान होती है, और पहचान होने से उसमें जितनी भी शक्तियां है, जितनी भी ताकत है, जितना भी सामर्थ्य है, उसका विश्वास आता है। और उसका विश्वास होने से ज्ञान बल पैदा होता है, और वो ज्ञान बल आत्मज्ञान का कारण बनता है, अनुभूति का कारण बनता है। इस तरह से ये जो ज्ञायकता लक्षण वाली बात है, ये बहुत गहराई से समझने योग्य है, और इतनी गहराई तक जाना चाहिए कि उसका प्रयोग करके पहचान हो जाए, जब तो बात बराबर है। तो वो पहचान कराने के लिए वो बात है, लक्षण है वो पहचान कराने, पहचान हो जाए उतनी गहराई में जाना चाहिए। वो निधान दर्शन में केड़ी में तीसरा प्रकरण में वो बात लिया है, तो वो प्रयोग कैसे करना, 56वां पाना ऊपर से निधान दर्शन में केड़ी में त्रिजु प्रकरण से मैं 56वां पाना ऊपर ये प्रयोग के मिलते था। इसे अपने कार्य थोड़ा विस्तार से ले